हरे कृष्ण। भगवद गीता यथारूप अध्याय पहला। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पांडुपुत्राणां आचार्यं महतीं च मुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैभ्यश्च नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सम्यार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजयनेन हर्षम् कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चै शङ्खं दद्मो प्रतापवान्। ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पणवानखगोमुखा सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्द तुमुलो भवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खम् भीमकर्म वृकोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथ। दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते। सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र सम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाहं महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये हृदं स्थापय मेऽच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। योत्स्यमानानवेक्षेहं य एतेऽत्र समागतः धातृराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षव। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुखत सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुन्निति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितृन्नत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून्नवस्थितान् कृपया परया विष्टो विशिदन्निदमब्रवीत। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्न्योमवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगासुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तदा एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेतस्मा हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापदेस्माद्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषरेतैर्कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकै उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्योनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यत यदि मां प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः भारतराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानस। ओम श्रीमद् भगवद गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे अगले आज के इस बुधवार के कार्यक्रम में। पिछले बुधवार हमने संजय द्वारा कहित श्लोक लिया, जिसमें संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन के विजय के लक्षण कौन कौन से हैं। और पिछला श्लोक काफी महत्वपूर्ण श्लोक था, जिसमें संजय काफी लक्षण बता रहे हैं अर्जुन के विजय के। याद है आप लोग कौन कौन से लक्षण? कपिध्वज, जिसका अर्थ है कि स्वयं हनुमान जी अर्जुन के रथ पर विराजमान थे, अर्जुन के रथ के ध्वजा पर। इसके पश्चात कपिध्वज के पश्चात महीपति, तो केवल वो अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे धृतराष्ट्र ने जो प्रश्न पूछा था उसके प्रति। ऋषिकेशम, कि जो सारे व्यक्ति जीव सभी के ऋषिक के ईश हैं, सभी के इंद्रियों के जो स्वामी हैं, वो उपस्थित हैं अर्जुन के रथ के ऊपर। तो फिर अर्जुन के विजय की कोई संभावना, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि अर्जुन की विजय नहीं होगी। तत्पश्चात धनुर उद्यम्य पांडव, परंतु ये किसके संदर्भ में है? धृतराष्ट्र के पुत्रों के, धार्तराष्ट्रान की। जब अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखा तो अपना धनुष उठाया। और पिछले हफ्ते हमने चर्चा की थी कि अर्जुन इस समय अपनी कृपा नहीं दिखा रहे। अर्जुन ने जब दुर्योधन इत्यादियों को देखा तो अर्जुन इतने क्रोधित हुए कि तुरंत अपना धनुष ढूंढा और धनुष उठा लिया, सब याद करते हुए कि इस दुर्योधन ने, दुशासन ने और अन्य कौरवों ने क्या क्या किया इनके साथ। परंतु भगवान ने देखा, क्योंकि भगवान ऋषिकेश, तो भगवान ने देखा कि यदि अर्जुन ने धनुष उठा लिया है तो मैं गीता कैसे सुना सकूंगा, क्योंकि अर्जुन ने धनुष उठा लिया अर्थात युद्ध प्रारंभ, कोई आशंका नहीं अब युद्ध में। तो अब भगवान अर्जुन को प्रेरित करते हैं अंदर से, क्योंकि भगवान तो चैत्य गुरु के रूप में सबके हृदय में स्थित है, परमात्मा अंतर्यामी। तो भगवान अंतर्यामी परमात्मा चैत्य गुरु के रूप में अर्जुन को प्रेरित करते हैं अब ये वाक्य कहने के लिए। इसलिए पूरे महाभारत में जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो अब हम चर्चा करने वाले हैं। अर्जुन ने अपना रथ भगवान श्री कृष्ण को कहा कि दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाओ, और यदि आप देखें तो अचानक ही अर्जुन ये श्लोक बोल रहे हैं। इसमें आप यदि आपका लॉजिक या तर्क लगाओगे तो लॉजिक तर्क काम नहीं करेगा कि अब धनुष उठा लिया, धनुष उठाने के बाद अर्जुन ने ये क्यों कहा कि अब रथ को बीच में ले जाओ। ऐसा तो नहीं था कि अर्जुन दूरी नापना चाहते थे कि मेरे बाण पहुंच पाएंगे कि नहीं, देखता हूं वहां से। क्या अर्जुन को इसकी आशंका थी कि उनके गांडी उनकी प्रत्यंचा में इतनी शक्ति नहीं कि बाण वहां तक पहुंच पाए? अचानक बाण उठाने अपने धनुष उठाने के बाद अर्जुन ये क्यों कहे? क्योंकि यहां पर भगवान प्रेरित कर रहे हैं, देखिए। इसलिए अचानक धनुष उठाने के बाद अर्जुन भी नहीं जानते कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इसलिए ये श्लोक हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमें भगवद गीता सुनने मिली। यदि अर्जुन ये श्लोक नहीं बोलते, यदि अर्जुन भगवान को नहीं कहते कि दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ ले जाओ, तो बाकी सब जो कुछ हुआ वो सब नहीं होता। इसलिए बहुत ध्यान से इस श्लोक का उच्चारण आप लोग कीजिए। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत यावदेतान निरीक्षेहम् योद्धु कामान अवस्थितान्। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत यावदेतान निरीक्षेहम् योद्धु कामान अवस्थितान्। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत यावदेतान् निरीक्षेहम् योद्धु कामान् अवस्थितान्। अर्जुन कहते हैं सेनयोर उभयोर मध्ये। मैं अनुवाद यहां पर इसलिए नहीं आप लोगों को दिखा रहा है ताकि हम केवल संस्कृत शब्दों का विभाजन कर समझें तो धीरे धीरे कम से कम इस अध्याय के अंत तक कुछ संस्कृत भी सीख सकेंगे हम। हाँ, तो सेनयोर उभयोर, जैसे मराठी में भी कहते ना उभे, हाँ उभे बोलते ना। तो अर्जुन ने दोनों सेनाओं के मध्य में मध्ये उभे खड़े करने के लिए कहा। रथम स्थापय मे च्युत, रथ स्थापित और एक बहुत ही विशेष शब्द अर्जुन या संजय अब तक कह रहे हैं, या संजय अर्जुन ने जो कहा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। अच्युत भगवान का एक नाम है, अच्युत। यावदेतान निरीक्षे हम, और निरीक्षण किया अर्जुन ने, निरीक्षण किया कौन सी सेनाओं का? कौरव सेना का निरीक्षण किया। योद्धु कामान, देखते हुए कि कौन कौन एकत्रित हुए हैं युद्ध की कामना से। योद्धु कामान अवस्थितान, युद्ध की कामना से कौन कौन वहां पर उपस्थित हैं। अब भाई रणभूमि में सभी लोग अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हैं तो क्या कामना होगी? वहां पर कोई डिस्को तो नहीं होने वाला। तो फिर भी अर्जुन ध्यान से देखना चाहते थे कि कौन कौन कितने उतावले हैं इस युद्ध के लिए। ये देखने के लिए अर्जुन ने भगवान श्री अच्युत से कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में उभा करो। अच्छा, अब यहां पर जैसे संजय ने पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा कि जो सबके ऋषि के ईश्वर हैं ऋषिकेश, और उन ऋषिकेश को उनके ही दास अर्जुन ने अपनी एक इंद्रिय से चलने के लिए कहा। तो अब ऋषिकेश कौन है यहां पर? यदि भगवान ऋषिकेश हैं और भगवान सबके इंद्रियों के स्वामी हैं, परंतु यहां पर अर्जुन ने तो केवल अपनी एक वाक इंद्रिय, अपनी एक इंद्रिय से वो ऋषिकेश को रथ हांकने के लिए और वो भी बीच में ले जाने के लिए कहा। और ऐसा नहीं कि भगवान अर्जुन को पूछे क्यों भाई, क्यों ले जाओ, कारण बताओ। अर्जुन ने भगवान ने अर्जुन को ये नहीं, हालांकि भगवान तो चाहते थे कि ले चले, और इसलिए यहां पर भगवान देखते हुए कि किसके सामने रथ खड़ा करूं जाकर, तो ठीक भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इनके सामने जाकर रथ को खड़ा किया। देखो ये उतावले हैं, ये जिनकी तुम पूजा करते हो ना, ये भीष्म, द्रोण, ये उतावले हैं तुम्हें मारने के लिए। तो भगवान जानबूझकर सामने। परंतु सबसे पहले हम गौर करेंगे इस मुद्दे पर कि भगवान ऋषिकेश हैं, परंतु यहां पर भगवान ऋषिकेश के ईश्वर अर्जुन बने हुए हैं, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और कोई भगवान श्री ऋषिकेश का ईश्वर नहीं बन सकता, केवल भगवान के शुद्ध भक्त। तो यहां पर ये एक उदाहरण है जहां पर अर्जुन ने केवल अपनी जिह्वा से उन ऋषिकेश को अपनी सेवा में लगाया, हालांकि अर्जुन इस भाव में नहीं थे। परंतु हम देखेंगे कुछ और उदाहरण जहां पर भगवान के भक्तों ने अपनी जिह्वा से कैसे भगवान को प्रेरित किया करने के लिए कुछ। सबसे पहला उदाहरण अवश्य ही माता यशोदा एवं ब्रज गोपियों का। माता यशोदा की जिह्वा में इतनी शक्ति थी कि भगवान श्री कृष्ण थर थर कांपते थे दामोदर लीला। अब दामोदर लीला वो लीला है जहां पर भगवान की केवल पांच इंद्रियां नहीं, पूरे शरीर को बांध दिया माता यशोदा ने। एवं संदर्शित यंग हरिणा भृत्यवश्यत स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं स ईश्वरं वशे। भगवान सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में कहते हैं कि भगवान सभी ईश्वरों को दिखा रहे थे कि तुम सब ईश्वर हो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, और ये माता यशोदा मेरी ईश्वर है। तो माता यशोदा ने कई बार केवल अपनी जिह्वा से डांट फटकार कर भगवान को कहा तुमने माटी खाई। वो चित्र तो भगवान ने कहा मैं क्यों खाऊंगा माटी, अरे इतना माखन, इतना दही, इतना सब कुछ, 9 लाख गायें हैं, सब कुछ आप देती हैं, क्यों माटी खाऊंगा मैं? तो फिर ये लोग सब कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ तो एक ही व्यक्ति बोलता है। तो भगवान ने कहा कि भाई अब तुमको जिस पर विश्वास करना है करो, सारी दुनिया मुझ पर विश्वास करती है और तुम इन पर विश्वास कर रहे हो। तो माता यशोदा ने फिर भगवान से कहा ठीक है मुंह खोलो। तो भगवान ने अपना मुंह खोला, माता यशोदा ने बोलते ही भगवान ने मुंह खोल दिया। तो माता यशोदा की वाक शक्ति देखिए कि बोलते ही। अन्य गोपियां, अन्य वरिष्ठ गोपियां जब भगवान केवल 2 साल के थे, बस अब चलना शुरू ही किए थे भगवान, तो अन्य ब्रज गोपियां वो भगवान को ले चलती अपने घरों में और वहां पर भगवान से कहती कान्हा जाओ वो पीढ़ा उठाकर लाओ। पीढ़ा आप लोग समझते क्या होता है? पाटा। पाठ, वो बैठने का जो आसन होता है, तो वो कहती थी कि जाकर पीढ़ा लेके आओ। केवल बोलने मात्र से, केवल इतना बोल दिया कि जाकर पीढ़ा लेके आओ, तो छोटे से कान्हा वो अपने छोटे छोटे से पैर लेकर चलते और बड़ी मुश्किल से उस पीढ़े को उठाते। और कई बार तो जब उनको कहा जाता कि पीढ़ा लेकर आओ, तो जाकर उसको स्पर्श कर कर आ जाते, कि स्पर्श करना और उठाना एक ही ठीक है। हालांकि कवि कर्णपुर वहां पर कहते हैं, हमारे गौड़िया वैष्णव आचार्य, कि भगवान पीढ़ा क्यों नहीं उठाते थे, क्योंकि भगवान सोचते थे कि ये क्या उठाने के लिए बोल रहे, अरे आगे चलकर मैं गोवर्धन उठाने वाला हूं, ये सब पीढ़ा वीढ़ा क्या इंसल्ट है। इसलिए भगवान केवल ऐसा स्पर्श करते थे, ये सब फालतू उठाने के लिए मत बोलो मुझे, अरे कुछ गोवर्धन बोला होता तो ठीक था, पीढ़ा उठाओ क्या है। फिर कई गोपियां कहती कि अच्छा कान्हा बताओ तुम्हारे बाल कहाँ हैं? तो हालांकि 2 साल का जो बच्चा होता है उसके इतने ज्यादा बाल नहीं होते, सही बात है, परंतु भगवान के बहुत गहरे घुंघरालू बाल थे और भगवान तुरंत अपने बाल दिखाते। फिर वो पूछती अच्छा कान्हा तुम्हारा नाक कहाँ है बताओ, तो भगवान अपना नाक दिखाते। तुम्हारी आंखें कहाँ है बताओ, आंखें दिखा। तुम्हारे दांत कहाँ है, तो भगवान अभी तक नहीं आए। तो भगवान अपनी सारी इंद्रियां दिखा रहे थे इन गोपियों को। कवि कर्णपुर कहते हैं इसलिए कि भगवान बोल रहे थे ये मेरी आंखें, ये मेरे नाक, ये मेरे कान और जीवा, इन सब की सेवा तुम लोगों को आगे करनी है, इसलिए दिखा रहा हूं मैं ठीक से। मैं ऋषिकेश हूं और केवल इन ऋषिक का ईश्वर नहीं बल्कि तुम्हारे सारे इंद्रियों का मैं ईश्वर हूं, और तुम्हारी सारी इंद्रियों को एक साथ लेकर ये मेरी जो इंद्रियां हैं इसकी सेवा में तुम्हें लगना है, इसलिए दिखा रहा हूं ठीक ठीक से कि मेरी आंखों की सेवा कैसे करनी है, मेरे जीवा की सेवा कैसे करनी है, सब इंद्रियों को दिखा रहे। फिर एक गोपी वो भगवान से पूछती है कि तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है? तो भगवान सोचने लगे कि भाई मेरे भी कोई माता पिता हो सकते हैं, सारों का तो मां बाप मैं ही हूं। परंतु भगवान हालांकि केवल 2 साल के, परंतु संस्कृत व्याकरण का प्रदर्शन इन गोपियों के सामने किया भगवान ने, कि माता और पिता, तो माता पिता इन दोनों शब्दों में से माता का पहला अक्षर मां लिया और पिता का आखिरी ता, और कहा मात। जैसे कि अंग्रेजी में पेरेंट्स बोलते हैं ना, पेरेंट्स का अर्थ है दोनों, माता पिता दोनों, दोनों को पेरेंट्स कहा जाता। तो वैसे ही संस्कृत में जब मात कहते हैं तो मात का अर्थ है दोनों, माता और पिता। तो सारी गोपियां वो आश्चर्यचकित हो गई कि इतना सा 2 साल का इसको संस्कृत का इतना गहरा ज्ञान कैसे हो गया। ये जानते नहीं कि इन्हीं से तो सब कुछ उद्धृत हुआ है। और इस प्रकार से ये सारी गोपियां भगवान श्री कृष्ण को जो कुछ कहती, भगवान को एक गोपी ने कहा कि कान्हा तुमको मैं संदेश दूंगी खाने के लिए, खाने का एक संदेश होता है मिठाई, तो तुम्हें मैं संदेश दूंगी खाने के लिए, थोड़ा नाच के बताओ। तो छोटे से भगवान, सोचिए भगवान इन गोपियों के सामने नाचते थे, कोई संदेश के लिए नहीं, केवल यह दिखाने के लिए कि जब मेरे कोई भक्त मुझे कोई आदेश देते हैं तो मैं कैसे उसका पालन करता हूं। तो कवि कर्णपुर कहते हैं कि भगवान नृत्य करने लगे ये दिखाते हुए कि भगवान प्रैक्टिस करना शुरू किए कि रासलीला में जो नृत्य करना होगा मुझे, तो उसके लिए अभी से ये सारी गोपियां मुझे डांस लेसन्स प्रैक्टिस सेशंस दे रही हैं। तो सबसे पहले उदाहरण है माता यशोदा और अन्य ब्रज गोपियों का, जिन्होंने अपने वाक शक्ति से भगवान को क्या कुछ नहीं कराया। और एक उदाहरण श्रीमद् भागवत में है गजेंद्र। अब सोचिए ब्रज गोपियां यशोदा माई ये तो सब बहुत बड़े भक्त भगवान के, परंतु गजेंद्र वो तो एक हाथी, एक पशु की योनि में। और हम सब ये कथा जानते हैं गजेंद्र को जब उस मगरमच्छ ने पकड़ लिया तब गजेंद्र को अपना पिछला जन्म याद आया जब वो महाराज इंद्रदुम्न थे और भगवान के अनन्य भक्त थे, तो सारी प्रार्थनाएं उन्हें याद आई और गजेंद्र ने भगवान का नाम उच्चारण अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा किया और अपनी प्रार्थना पूरी होने से पहले भगवान दौड़े दौड़े आए। भगवान यहां तक कि गरुड़ जी, हमने ये कथा बहुत बार सुनाई है कि गरुड़ जी भी धीमे पड़ गए भगवान को ले जाने के लिए, इतने भगवान उत्सुक थे गजेंद्र तक पहुंचने के लिए कि भगवान ने गरुड़ जी को भी अपने कंधों पर उठा लिया और गरुड़ जी को अपने कंधों पर उठाकर भगवान भागते हुए गजेंद्र कृष्णा ये पूरा बोलने से पहले भगवान पहुंच गए। इतनी आतुरता भगवान की गजेंद्र का मोक्ष करने के लिए। तो यहां पर उदाहरण है कि गजेंद्र ने अपनी प्रार्थनाओं से भगवान का आह्वान किया और भगवान को प्रेरित किया आने के लिए। और एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण महाभारत में है द्रौपदी कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण का प्रयास किया गया, दुशासन जब वो प्रयास कर रहा था तो द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए जब भगवान को पुकारा हे गोविंद हे गोपाल, तो भगवान सब कुछ अपना सर्वस्व छोड़कर द्रौपदी की रक्षा करने के लिए द्रौपदी की साड़ी बनकर भगवान अवतरित हुए। देखिए भगवान के विभिन्न अवतारों में से ये भी एक अवतार है द्रौपदी की साड़ी। यह आप कहां अवतारों की लिस्ट में नहीं देखोगे कि भगवान मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, साड़ी, केशव धृता साड़ी रूपा, जय जगदीश हरे, दश अवतार में नहीं है, परंतु भगवान साड़ी के रूप में और द्रौपदी की रक्षा की, क्योंकि द्रौपदी ने केवल अपने जिह्वा से भगवान के नाम का उच्चारण किया, आह्वान किया। वो भजन में हम गाते हैं करुणा कर द्रौपदी पुकारी पट में लिपट गयो वनवारी, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम, कि जो ऐसे प्रेम पुजारी हैं राधे श्याम उनके विषय में हम क्या कहें कि जो केवल यहां तो उच्चारण की हम बात कर रहे हैं, केवल स्मरण करने मात्र से, केवल स्मरण करने मात्र से भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। तो फिर यहां पर अर्जुन भगवान सामने हैं और अर्जुन भगवान को अपनी जिह्वा से बोल रहे हैं चलो सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युत, हे अच्युत ये मेरा रथ ले जाओ और दोनों रथों के बीच, दोनों सेनाओं के बीच में इस रथ को स्थापित कीजिए। अब अर्जुन ने भगवान को अच्युत कहा, रथम स्थापय में अच्युत, तो भगवान के अच्युत नाम का महत्व क्या है? कोई जानता है कि भगवान को इस नाम से क्यों पुकारा जाता है? हा? कभी पराजित जो नहीं होते वो दूसरा नाम है भगवान का, उसे कहते हैं अजित। जो कभी पराजित नहीं होते उन्हें कहते हैं अजित। हाँ जो दूसरों की सेवा करें उसे अच्युत कहते हैं। हाँ, जो कभी अपने पद से हिलते नहीं, च्युत नहीं होते। अच्छा अच्छा मैं बताता हूं, संस्कृत में च्युत ये जो शब्द है इसका अर्थ है गिर जाना, और अच्युत का अर्थ है जो कभी गिरते नहीं। तो हम अब देखेंगे कि भगवान कौन कौन सी स्थितियों में अपने पद से च्युत नहीं होते, इसलिए उन्हें अच्युत कहा गया है। कभी अपने स्वधाम से भगवान च्युत नहीं होते। भगवान का स्वधाम है गोलोक वृंदावन, और भगवान के विषय में कहा गया है कि वृंदावनम परित्यज्य पदम न गच्छति, कि भगवान अपने श्री वृंदावन धाम से एक पद भी बाहर कभी नहीं निकालते, वो हर समय अपने स्वधाम में स्थित रहते हैं। अब देखिए, हम भी भगवान का स्वधाम अपना घर छोड़कर यहां पर आए, तो भगवान जब यहां पर आते हैं और हम जो यहां पर आए हैं वो एक समान नहीं है। ऐसा नहीं कि हम भी कह दे हम भी अच्युत हैं भाई, भगवान भी तो आते हैं, हर युग में आते हैं इस धरती पर, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हम भी हर युग में आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, अरे हमारी ग्लानि दूर करने के लिए वो आते हैं। तो जैसे कई बार मायावादी जो होते हैं वो एक उदाहरण देते हैं कि आप एक कागज का टुकड़ा लो और उस कागज के टुकड़े को चिंदी चिंदी पाड़ दो। अब वो कागज का टुकड़ा रहा नहीं जो ओरिजिनल था, तो वही उदाहरण देते हैं कि वही जो परम सत्य जब इस भौतिक संसार में अपने आप को विस्तारित करते हैं, किसमें? हम सब में, तो वो अलग अलग कागज के टुकड़े अब सभी कागज हो गए, है ना? अब केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं, सभी छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं। तो मायावादी उदाहरण देते हैं कि वो परम सत्य जब इस भौतिक संसार में आते हैं तो छोटे छोटे भगवान के रूप में हम जैसे हम लोग, कैसा लगा उदाहरण? इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि जब भगवान इस भौतिक संसार में आते हैं और हम जो इस भौतिक संसार में है, जमीन आसमान का अंतर है, कौन आसमान कौन जमीन। जैसे कि एक बार एक व्यक्ति हर बार अपराध किया करता था तो उसे कोर्ट में बुलाया जाता था जज के सामने। तो जज ने इस अपराधी से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम फिर से आ गए, आए दिन हर महीना तुम्हारी हाजिरी यहां पर लगती है, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो वो अपराधी कहता है जज से, अरे भाई मेरी तो महीने में एक बार लगती है, आप तो रोज आते हैं, जब आपको शर्म नहीं आती रोज आते हुए तो मेरे को क्यों शर्म आएगी। अब इसमें कोई अंतर है क्या? जज कोर्ट में आता है और एक अपराधी कोर्ट में लाया जाता है, दोनों में अंतर है कि नहीं? तो यदि अपराधी कहे जज से, अरे वो भी तो आ रहा है रोज कोर्ट में, और यदि कोई कैदी जेलर से कहे, यार ये भी तो जेल में आता है रोज, तो इसमें और मेरे में क्या अंतर है? तो वैसे ही अगर कोई कहे कि हम भी यहां पर आए, भगवान भी यहां पर आए, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए भगवान हालांकि अपना स्वधाम छोड़कर यहां पर आते हैं परंतु अपने विस्तारित रूप में, जैसे कि गोलोक वृंदावन धाम जो है वहां पर तो कोई राक्षस भी प्रवेश नहीं कर सकता, वहां पर कोई भगवान की राक्षस वध की लीला होती नहीं गोलोक वृंदावन में, ये भौम वृंदावन में ये सब लीला भगवान की होती है। और भौम वृंदावन में भी जो श्याम सुंदर कृष्ण हैं, जो ब्रजवासियों के साथ विहार करते हैं, श्याम सुंदर कृष्ण किसी भी राक्षस का वध नहीं करते। ये वासुदेव कृष्ण जो उनके विस्तारित स्वरूप, ये सब भगवान के बिहाफ पर इन राक्षसों का काम तमाम करते हैं। जैसे कई बार देखा जाता है ना, किसी को पैसे दिए जाते, चलो उसको मार, क्या क्या सुपारी। तो जो वासुदेव भगवान के विस्तारित अंश हैं, उनको श्याम सुंदर कृष्ण ने नियुक्त किया है कि ये सारे असुरों का वध करने के लिए। इसलिए भगवान श्री श्याम सुंदर वो तो केवल जो एकदम मधुर दिव्य लीलाएं हैं गोपियों के साथ, गोपों के साथ, गायों के साथ, ये सब लीलाओं में रहते हैं। इसलिए भगवान यहां पर अच्युत इसलिए कहा गया है कि वो अपने स्वधाम से कभी च्युत नहीं होते। दूसरा अर्थ यह है कि कभी अपनी भगवत्ता से वो च्युत नहीं होते। इस भौतिक संसार में भी भगवान आ जाए और हमारी तरह लीला करें, जैसे कि गोपियों ने भगवान से कहा पीड़ा उठाकर लाओ, नाच कर दिखाओ, तुम्हारे इंद्रियों को दिखाओ। जब ये सब कुछ माता यशोदा तो यहां तक कि बांध दिया भगवान को, डांट फटकारती हैं, नंद महाराज के पादुकाएं उठाकर भगवान लेकर आते हैं, तो ये सब, हालांकि भगवान भौम वृंदावन में ये सब लीलाएं करते हैं परंतु अपनी भगवत्ता कभी छोड़ते नहीं। इसलिए इन सब लीलाओं के मध्य में भी भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं। हालांकि ब्रजवासियों को वो समझ में आए या ना आए वो दूसरी बात है, ब्रजवासियों को समझ में नहीं आता भगवान का ऐश्वर्य, परंतु भगवान दिखाते हैं। अच्छा बताइए, कौन कौन से लीलाओं में भगवान ने अपना ऐश्वर्य भी दिखाया? हाँ, सभी असुरों के वध में भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया। सामने बकासुर, बकासुर कौन से रूप में आया था? हाँ, बक, बक पक्षी का नाम है, बगुला, बगुला भगत। तो बगुले के रूप में ये बकासुर, और भगवान ने गोपों के सामने इतना बड़ा ये विशाल बगुला, ये गोप भी देख, इतना बड़ा बगुला तो कभी देखा नहीं, और इतने बड़े बगुले के दोनों चोंच पकड़कर फाड़ दिया भगवान। वो भगवान इतने से, भगवान और बगुले के तरफ बड़े नहीं हुए। तो गोपों ने ये सब कुछ देखा और जाकर ताली मारते हुए माता यशोदा को कहते, आज इसने बगुले को मार दिया। तो ऐसा नहीं कि माता यशोदा फिर छानबीन कर रही है, डिटेक्टिव को भेजा पता लगाने के लिए कि कौन सा बगुला था, कैसे मारा, ठीक है ठीक है बैठो चलो, माता यशोदा को कोई फर्क ही नहीं, वहां धो और खाओ चलो। तो ये सब असुरों का, अघासुर इतना बड़ा, वो 12 मील लंबा अघासुर, फिर पूतना, पूतना को तो इनके सबके सामने ये सब किया, परंतु फिर भी और कौन सा, और कौन सी लीला जिसमें ऐश्वर्य दिखाया? कालिया, तृणावर्त, अपना विश्वरूप अपने ही मुख में माता यशोदा को दिखाया, गोवर्धन लीला 7 दिन, सबसे बड़ी ऐश्वर्यशाली लीला भगवान की गोवर्धन लीला, 7 दिन 7 रात सबके सामने, ऐसा नहीं कि कोई भी ब्रजवासी बचा था उसमें, सभी ब्रजवासियों के सामने भगवान ने, और कोई सपोर्ट नहीं यहां वहां, सभी देख रहे हैं कि केवल उनकी छोटी सी उंगली के ऊपर ये गोवर्धन टिका हुआ है। इतना ऐश्वर्य देखने के बाद भी ब्रजवासी, नंद महाराज आकर भगवान से कहते हैं, मैं लूं थोड़ा हाथ, तो भगवान भी सोचने लगे इतना ऐश्वर्य दिखाने के बाद भी ये लोग को विश्वास नहीं। तो भगवान ये सारा ऐश्वर्य ब्रजवासियों से ज्यादा हम सब को दिखाने के लिए किए, ताकि यदि ये सब ऐश्वर्य भगवान नहीं दिखाते तो हमें लगता है कि उनमें और हम में क्या अंतर है। यदि केवल भगवान माखन चोरी लीला करते, यदि केवल रास लीला रचाते, तो उसका तो अनुकरण बहुत लोग करना चाहते हैं और करते भी हैं, परंतु भगवान इसलिए इतना ईश्वरी दिखाए ताकि भगवान अपना ये नाम सिद्ध कर सके अच्युत, कि मैं हालांकि माखन चोरी की लीला भी करता हूं, मैं साधारण सी जो लीला आप लोग समझते हो वो भी करता हूं, परंतु इसके साथ साथ मैं अपनी भगवत्ता से कभी च्युत नहीं होता, कभी अपने आकर्षण शक्ति से च्युत नहीं होते भगवान। चाहे भगवान अब इस भौतिक संसार में देखिए, कोई व्यक्ति यदि उसमें आकर्षण शक्ति हो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति बहुत सुंदर दिखता हो, परंतु कई बार वो सुंदरता केवल आजकल तो केवल मेकअप वगैरह किया तभी कोई व्यक्ति थोड़ा देखने लायक होता है, वो बिना मेकअप के यदि कोई उसे देख लेगा तो कोई व्यक्ति पहचान भी नहीं पाएगा। तो कोई व्यक्ति सुंदर है परंतु हर समय वो आकर्षित नहीं रहता, वो व्यक्ति हर समय नहीं रहता आकर्षित। कोई व्यक्ति यदि बहुत गुणवान है तो वो व्यक्ति जब तक अपनी गुणवत्ता दिखाएगा नहीं तब तक वो दूसरों को आकर्षित नहीं कर सकता। वैसे ही कोई शक्तिशाली है, जो भी ये सारे ऐश्वर्य हैं, परंतु भगवान हर समय अपनी आकर्षण शक्ति अपने साथ ही रखते हैं, इसलिए उनका नाम उनकी इस आकर्षण शक्ति के वजह से उन्हें मिला है, सर्व आकर्षति इति कृष्ण, जो सबको आकर्षित करे। तो यहां तक कि वृंदावन के पेड़ पौधे, वृंदावन की मधुमक्खियां, वृंदावन के हिरण मोर, ब्रजवासी गोपी सभी आकर्षित भगवान से एक ही समान। इसलिए यहां पर हालांकि इसमें बहुत से हम कथाएं भी बोल सकते हैं, परंतु उतना समय आज नहीं है, कि भगवान कैसे अपनी आकर्षण शक्ति से च्युत नहीं हो सकते, कभी अपने भक्तों की सेवा से च्युत नहीं होते भगवान, इसलिए भी उन्हें अच्युत कहा गया है, क्योंकि भगवान स्वयं उन्होंने ये प्रण लिया है कि वो हर समय वो उनके भक्तों के भक्त हैं। अहम भक्त पराधीन, अम्बरीश महाराज की कथा में कहा गया है। तो अर्जुन, अर्जुन का उदाहरण है कि अर्जुन की सेवा भगवान किस प्रकार से किया करते थे, रथों को साफ किया करते थे, घोड़ों को साफ किया करते थे, अर्जुन के उठने से पहले रथ अर्जुन के तंबू के सामने लाकर खड़ा किया करते थे, ये सब कुछ सेवा भगवान स्वयं व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों की रक्षा से च्युत नहीं होते। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें इस भौतिक संसार में सबसे ज्यादा आवश्यकता है भगवान के अच्युत होने के इस गुण में। कौन्तेय प्रति जानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, भगवान ने इसी गीता में अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम जाकर कहो सबसे, क्योंकि यदि मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे अरे भाई इसकी बात पे कौन विश्वास करता है, तो तुम जाकर कहो। और महाभारत में ये कथा है कि जब युद्ध के 5 दिन बीत चुके थे तो दुर्योधन को कोई आसार नहीं नजर आ रहे थे उसकी विजय के, तब भी उसे आशा थी कि वो जीतेगा, और अर्जुन इस प्रकार से युद्ध कर रहे थे क्योंकि अभी अभी गीता सुनी है, और वो भी गीता सुनने के बाद अर्जुन जिस प्रकार से युद्ध कर रहे थे कोई अर्जुन की तरफ देख भी नहीं पाता था, इस प्रकार से अर्जुन युद्ध कर रहे थे। तो हुआ ये कि अब एक आपको प्रश्न पूछते हैं, देखते हैं कि थोड़ा कठिन प्रश्न है कि आप लोगों का महाभारत का जनरल नॉलेज कितना है, कि अर्जुन 5वें दिन युद्ध भूमि के दक्षिण दिशा में युद्ध कर रहे थे संस्थापक से, अलग प्रकार के योद्धा थे दुर्योधन ने नियुक्त किए थे अर्जुन से युद्ध करने के लिए, क्योंकि उस समय पांडु सेना के पांडवों के तरफ से उनके पक्ष से एक ऐसे योद्धा का वध करना था दुर्योधन को, इनका नाम था इरावन, कोई जानता है? इरावन कौन कौन सा योद्धा कौन था ये? अर्जुन के पुत्र थे। अर्जुन का एक विवाह हुआ था एक नाग कन्या से जिसका नाम था उलूपी, और उलूपी का पुत्र इरावन। तो इरावन इतना भयावह तरीके से कौरवों को मार रहा था कि दुर्योधन डर गए, तो अर्जुन का पुत्र ही खत्म कर देगा। तो इसलिए अर्जुन को अलग दक्षिण दिशा में युद्ध करने के लिए इन संस्थापक को लगाया, और इरावन का वध फिर यहां पर अलग से किया गया। इरावन का वध किया अलम पुष करके एक योद्धा ने, जो कि बकासुर का भाई था। हमने बकासुर की चर्चा की, और इसलिए उसे बहुत क्रोध था भगवान कृष्ण के ऊपर, ना भीम के ऊपर। वो बकासुर अलग, जो भीमसेन ने मारा था, ये बकासुर, भीमसेन ने एक बकासुर को मारा था। तो भीम के ऊपर और अन्य पांडवों के ऊपर बहुत क्रोध था, तो इसने इरावन का वध किया। और जब अर्जुन उन योद्धाओं से युद्ध कर रहे थे, तो ये सारे योद्धा बहुत शक्तिशाली और ऐश्वर्यशाली योद्धा थे। तो अर्जुन अपने दिव्य अस्त्र अब तक निकाले नहीं थे, 5वें दिन तक अर्जुन ने अपने दिव्य शस्त्र नहीं निकाले थे। साधारण से अपने तीर से ही सबको खत्म कर रहे थे अर्जुन, निकालने की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक। तो इनके ऊपर निकालना पड़ने वाला था अर्जुन को अपने दिव्य शस्त्र, परंतु जैसे ही अर्जुन को यह समाचार मिला कि उनके पुत्र इरावन का वध कर दिया, तो अर्जुन इतने पहले तो वियोग में गए, और उसके बाद में अर्जुन ऐसे क्रोध में आए कि फिर ये जो संस्थापक थे, इनका कोई अतापता किसी को नहीं पता लगा कि ये रणभूमि में कहां मर के गिरे पता नहीं लगा। अर्जुन ने इतने इतने ज्यादा अपनी शक्ति से इनको मारा, और कोई अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल करते हुए नहीं। तो अर्जुन ने उस दिशा में, दक्षिण दिशा में इनका सबका वध किया। और यहां पर हुआ ऐसा कि अब घटोत्कच युद्ध करना शुरू किए, इरावन के युद्ध के पश्चात घटोत्कच युद्ध करना शुरू किए। तो दुर्योधन और अन्य सारे आ गए घटोत्कच को मारने के लिए, और उस समय भीमसेन आए वहां पर। तो दुर्योधन ने किया क्या कि अपने सेना के 10,000 सैनिकों को भीम के सामने भेजा कि इसको अलग करो, अरे बाप बेटे दोनों मिल जाएंगे, घटोत्कच और भीम, तो यहां पर ही अंतिम हो जाएगा हमारा संस्कार। तो 10,000 योद्धा भीमसेन के सामने, और अपने हाथों से 10,000 योद्धाओं को भीमसेन ने खत्म कर दिया। और तब दुर्योधन ने सोचा कि अब भीमसेन थक गया होगा, 10,000 योद्धाओं को मारने के बाद भीम थक गया होगा, इसलिए दुर्योधन फिर भीमसेन के पास जाता है युद्ध करने के लिए। क्योंकि वो दुर्योधन जानता था कि यदि मैं भीम के सामने जाऊं और भीम थका हुआ नहीं है, तो मेरी थकान दूर कर देगा। इसलिए वो भीमसेन जब पूरा थक चुके थे, तब जाकर ललकारा युद्ध के लिए। और इसे ये नहीं पता कि भीम रुका हुआ था कि कब दुर्योधन ललकारे, और जैसे दुर्योधन ने ललकारा तो भीमसेन की सारी थकान दूर हो गई। इसी दिन की तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था, और मुझे पता नहीं इतनी जल्दी ये दिन आएगा। आओ दुर्योधन, चलो मैदान में। तो दुर्योधन डर गया, और द्रोणाचार्य कृपाचार्य वो डर गए कि दुर्योधन आज क्यों जा रहा है, ये आज खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो भीमसेन ने इतना जोर से दुर्योधन के साथ प्रहार शुरू किया, उसका मार मार के भूत बना दिया। और तब द्रोणाचार्य को आकर दुर्योधन को बचाना पड़ा, और द्रोणाचार्य ने आकर बाणों की वर्षा की, और भीमसेन के सामने एक पूरे बाणों का दीवार खड़ा कर दिया। और फिर कृपाचार्य से कहा इस दुर्योधन को ले जाओ बेस कैंप। तो वो घायल अवस्था में दुर्योधन पहुंचा और वहां पर इस अवस्था में कर्ण, क्योंकि कर्ण वो अब तक युद्ध भूमि में नहीं उतरे थे, क्यों? क्योंकि कर्ण ने यह प्रण लिया था कि जब तक भीष्म है मैं इस रणभूमि पर नहीं आऊंगा। तो कर्ण ने दुर्योधन को देखा, क्या हाल बना रखा है, कुछ लिया लगता है। तो दुर्योधन वो अब कर्ण, ये दुर्योधन के शब्द हैं, दुर्योधन कर्ण से कहता है बंद करो ये युद्ध, नहीं जीतेंगे हम लोग, पूरा हार गया दुर्योधन ऐसे। तो कर्ण बोलता है तुम बोल रहे हो, अरे मेरे जीते जी तुम्हें कौन हरा सकता है। तो दुर्योधन कहता है अरे तुम्हारे जीते जी तुम तो खाली यहां पर अंदर तंबू में बैठे रहते हो और वहां मार खाकर मैं आता हूं, इतना जोर से आज वो भीम ने मारा और उसे तो रोक लिया गया, नहीं तो मुझे तो खत्म कर देता वो आज, और वो भी 10,000 योद्धाओं को मारने के बाद ये हालत बनाई मेरी उसने। और अर्जुन वहां पर वो संस्थापक उनको इतनी जोर जोर से मार के उनका पता ही नहीं कहां पर है वो युद्ध भूमि में। तो मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग जीतने वाले हैं। तो कर्ण ने कहता नहीं, मैं युद्ध भूमि में आना चाहता हूं, 5 दिन हो गए अब तक मैं आया नहीं युद्ध भूमि में, परंतु जब तक भीष्म वो रहेंगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। तो तुम कुछ योजना बनाओ कि भीष्म वो रणभूमि छोड़े। तो दुर्योधन उस घायल अवस्था में उस दिन के युद्ध के बाद भीष्म के टेंट में जाते हैं। तो जब भीष्म के तंबू में जाते हैं तो भीष्म देखते हैं दुर्योधन को इस हालत में, तो भीष्म कहते हैं क्या हुआ ये। और स्वयं भीष्म पितामह अपने हाथों से जड़ी बूटी लगाते हैं दुर्योधन के घावों के ऊपर अपने हाथों से, बहुत विशेष प्रकार की हिमालय से लाई हुई जो भीष्म पितामह के पास जड़ी बूटी वो सब जड़ी बूटी वो लगाते हैं और दुर्योधन तुरंत सारे घाव भर जाते हैं दुर्योधन के, इस प्रकार की जड़ी बूटी। तो दुर्योधन फिर भीष्म पितामह को कहते हैं कि आज मेरा ये हाल दुर्योधन ने किया, और सब कुछ बताते हैं कि अर्जुन अर्जुन ने क्या किया। और फिर दुर्योधन भीष्म पितामह से कहते हैं कि मुझे नहीं लगता हम लोग ये युद्ध जीत पाएंगे, जिस जिस दशा में हमारा हमारा युद्ध कौशल चल रहा है उस दशा में मैं देखता नहीं कि हम जीत पाएंगे। और भीष्म पितामह वो दुर्योधन से कहते हैं कि दुर्योधन तुम इतनी जल्दी हार जाते हो, अरे तुम्हारे वजह से ही तो हम लोग सब यहां पर हैं युद्ध कर रहे हैं और तुम इतनी जल्दी। तो यहां पर दुर्योधन देखिए वो भीष्म पितामह को उकसाने आया था। तो दुर्योधन कहता है परंतु यदि हमारे ही जो मुख्य योद्धा हैं वो जब पांडवों के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, हालांकि हमारे पक्ष में है परंतु पांडवों के प्रति उनकी सहानुभूति है, तो कैसे हम जीत पाएंगे। तो भीष्म पितामह समझ गए कि ये ताना उनको मारा गया है। तो भीष्म पितामह ने कहा क्या तुम्हारे कहने का मतलब है, तात्पर्य क्या है। तो दुर्योधन कहता है कि अब ऐसा कीजिए कि आपसे तो हो नहीं रहा, आप न तो अर्जुन न भीम न अन्य पांडवों को कुछ कर पा रहे हो, आपसे तो कुछ हो नहीं रहा, तो ऐसा कीजिए कि आप कल से मत जाइए, आप आराम कीजिए, आप बूढ़े हो गए वैसे भी, अब आप में इतनी शक्ति नहीं है, आप आराम कीजिए और कर्ण को जाने दीजिए, कर्ण तैयार है और मेरे ख्याल से इस युद्ध को केवल एक ही व्यक्ति जिता सकेगा हमें और वो है कर्ण, तो आप आराम कीजिए। और जब भीष्म पितामह ने सुना कि दुर्योधन मुझे रुकने के लिए और मेरे बदले उस सूत पुत्र कर्ण उसे जाने के लिए बोल रहा है, तो भीष्म पितामह उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में एक ही भीषण प्रतिज्ञा ली थी, आजीवन ब्रह्मचर्य की, और उसके वजह से मुझे नाम मिला है भीष्म। आज तुम्हारे सामने मैं एक और भीषण प्रतिज्ञा लेता हूं, कल पांचों पांडव नहीं दिखेंगे। ये पांचों पांडवों का वध मैं अपने हाथों से करूंगा दुर्योधन, ये मैं तुम्हारे सामने ये प्रतिज्ञा ले रहा हूं। और दुर्योधन इतना खुश हुआ, और तब भीष्म पितामह ने अपना एक विशेष तुणीर, तुणीर आप लोग जानते हैं क्या होता है, अंग्रेजी में उसे क्विवर कहते हैं, समझ गए ना, यहां पर बाण रखे जाते हैं, योद्धा जो बाण रखते हैं उसे तुणीर कहते हैं, भाता बैंगन का नहीं भाता। तो एक ऐसा तुणीर जो आज तक दुर्योधन ने कभी देखा नहीं, ऐसा चांदी की तरह, चांदी का चमकता हुआ वो तुणीर, और उसमें सोने की तरह चमचमाते हुए पांच बाण भीष्म पितामह निकालते हैं, और वो पांच बाण इतने प्रज्वलित कि पूरा तंबू उनकी रोशनी से प्रज्वलित हो गया। और इन पांच बाणों को भीष्म पितामह अपने सामने रखते हुए मंत्रोच्चारण करते हैं, और मंत्रोच्चारण करके पूरी शक्ति, अपनी पूरी शक्ति इन पांच बाणों में डालते हैं, और कहते हैं कि ये बाण भीम, ये बाण नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, और ये बाण अर्जुन, ये पांच बाण कल इन पांचों पांडवों का वध करने वाले हैं, और ये मैं प्रण तुम्हें दे रहा हूं, केवल तुम अपने पास इसे रखना। तो दुर्योधन ने कहा, प्रण नहीं, मैं ये बाण भी अपने पास रखता हूं, पता नहीं रात में क्या हो जाए, तो ये बाण भी मैं अपने पास रखता हूं, कल जैसे ही आप मांगोगे मैं तुणीर में नहीं अपने हाथों में लाकर दूंगा ये बाण आपको, बाय हैंड पर्सनल सर्विस। तो इतना खुश दुर्योधन हो गया। तो भीष्म पितामह वो मुस्कुराने लगे, उन्होंने कहा, मैंने भीषण प्रतिज्ञा तो ले ली दुर्योधन, लेकिन तुम जानते नहीं कि पांडवों के पक्ष में कौन है। कौन है, दुर्योधन ने पूछा। एक व्यक्ति है पांडवों के पक्ष में जो कुछ भी कर सकते हैं, और इसलिए ये मैंने प्रतिज्ञा तो ले ली, ये पांच बाण तुम रखो, अब जो होगा वो उनकी इच्छा। तो दुर्योधन थोड़ा मूड था, समझ में नहीं आया उसे कि किसके बारे में बोल रहे हैं। तो अब आपको हम ले जाते हैं पांडवों के तंबू में, कि वहां पर क्या सीन है। तो आपके सामने, नजरों के सामने अभी सारे पांडव और भगवान श्री कृष्ण। तो वहां पर इरावन का वध के वजह से सभी लोग विलाप कर रहे थे, और अर्जुन फिर उसके पश्चात वो सोने गए, क्योंकि अर्जुन को फिर दूसरे दिन बहुतों का वध करना था, इसलिए अर्जुन सोने गए। तो भगवान श्री कृष्ण वो चिंतित अर्जुन के टेंट में ऊपर नीचे चल रहे थे, तो अर्जुन ने भगवान को देखा। अर्जुन पूछते हैं कि क्या बात है, आज आप चिंतित, गीता सुनाओ ऐसा नहीं कर। तो अर्जुन भगवान को ऐसे देख रहे हैं, भगवान कहते हैं कि अरे तुम सो रहे हो, तुम्हें पता नहीं कल क्या होने वाला है। तो अर्जुन ने पूछा क्या होने वाला है, भीष्म पितामह ने वो भीषण प्रतिज्ञा ली है कि तुम पांचों को, भीष्म पितामह कल उन पांच बाणों को लेकर मारने वाले हैं, और तुम सो रहे हो। तो अर्जुन भगवान से कहते हैं, भाई प्रण तो आपने भी एक लिया था, कौंतेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, तो वो आपका डिपार्टमेंट है, आप चिंता कीजिए, मैं चला सोने। तो भगवान अर्जुन को उठाते हैं कि नहीं, ये बहुत गंभीर बात है, इसलिए तुम्हें दुर्योधन के पास जाना होगा। तो अर्जुन ने कहा अभी इस समय दुर्योधन के पास क्यों? तो भगवान ने कहा कि तुम्हें याद है जब तुम लोग सब वनवास में थे तो दुर्योधन को गंधर्वों ने पकड़ लिया था, और अर्जुन तुमने दुर्योधन को उन गंधर्वों से मुक्त किया था, और उस समय दुर्योधन ने तुम्हें कहा था कि तुम जो भी वर मांगो मैं तुम्हें दूंगा अर्जुन। तो अर्जुन ने कहा तो मैं दुर्योधन के पास जाकर क्या मांगू? 5 बाण। तो अर्जुन ने कहा नहीं। तो भगवान कहते हैं क्या कहा था तुमने गीता में? करिष्ये वचनम तव, चलो जाओ। तो अर्जुन अब दुर्योधन, अब उस समय युद्ध इस प्रकार से हुआ करता था कि एक बार जब सूरज ढल गया उसके बाद कोई किसी के भी टेंट में जाकर उनकी पार्टियां होती थी, और फिर बाद में दूसरे दिन वही एक दूसरे के सामने प्रतिद्वंद्वी धनुष बाण गदा लेकर। परंतु अब सूरज ढल चुका था, तो जब अर्जुन दुर्योधन के तंबू में जाते हैं तो दुर्योधन स्वागत करता है, अर्जुन तुम यहां, और अर्जुन को अपने बगल में बिठाता है दुर्योधन, बगल में बिठाकर बड़े प्रेम से चाव से अर्जुन से पूछता है कि अर्जुन कैसे आना हुआ यहां पर? तो अर्जुन बैठे हुए उनको दुर्योधन को कहते हैं कि याद है वो गंधर्व तुम्हें बंदी बना लिए थे? अरे उसे याद मत दिलाओ बात कर। वो गंधर्वों ने बहुत हालत की थी मेरी, उसे याद मत दिलाओ। तो अर्जुन कहते नहीं मैं ये याद दिला रहा हूं कि मैंने तुम्हें बचाया था, याद है? हाँ याद है, याद है। और तुमने कहा था कि तुम एक वर अब तक पेंडिंग है, तुम एक वर दोगे मुझे। तो सोचिए दुर्योधन अर्जुन से क्या कहता है, मांगो जो मांगना है, तुम्हें हस्तिनापुर चाहिए, पूरा हस्तिनापुर तुम्हारा, मांग लो, अगर वो भी मांगना है तो पूरा दे दूंगा, कल से युद्ध बंद। इसमें दुर्योधन का गुणगान हुआ है कि दुर्योधन जैसा व्यक्ति उस समय के जो इस प्रकार के राक्षस जैसे दुर्योधन हुआ करते थे उनका भी स्टैंडर्ड था, ऐसा नहीं कि वो गए गुजरे थे, दुर्योधन भी स्टैंडर्ड का आदमी था। उसने बोला कि ठीक है तुमको तुमको हस्तिनापुर पूरा चाहिए, ले लो वो तुम्हारा। अर्जुन कहा कि नहीं वो तो मैं जीत के लूंगा, ऐसे नहीं, ऐसे लेने में तुमसे क्या मजा है, वो तो जीत के मैं लूंगा। तो दुर्योधन ने कहा तो फिर मेरे पास है क्या जो मैं तुम्हें दूंगा? अर्जुन ने कहा वो जो 5 बाण रखे। तो दुर्योधन उसने बिना कुछ कहे बिना रंज व्यक्त किए तुरंत जाकर उसने वो 5 बाण उठाए और अर्जुन को अपने उसके हाथों में दे दिए। और अर्जुन उन 5 बाणों को देखते हुए उनको अपने माथे पर लगाए कि ऐसे बाण अर्जुन ने भी कभी देखे नहीं थे। और अर्जुन उन्हें एक रेशमी कपड़ों में लपेट कर अर्जुन ले जा रहा था, तो दुर्योधन ने पूछा अर्जुन एक बात बताओ, ये बात तुम्हें कैसे पता लगी? ये बात और किसी को पता नहीं, ये तुम्हें कैसे पता लगी और इतनी जल्दी कैसे पता लगी? तो अर्जुन ने कहा एक ही व्यक्ति है और वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, और कौन हो सकते हैं। तो दुर्योधन अब रात भर उसको नींद नहीं आई, उसने सोचा कि एक आसार था कल वो भी अब चला गया। तो अब भीष्म पितामह सुबह उठते ही वो दुर्योधन के पास जाते हैं और दुर्योधन से कहते हैं तो दुर्योधन 5 बाण कहाँ है, रेडी है ना? तो दुर्योधन कहता है वो तो गए। तो भीष्म पितामह गए कहाँ गए? अर्जुन कल आया और अर्जुन ले गया वो 5 बाण। तो भीष्म पितामह मुस्कुराने लगे। दुर्योधन, मैंने कहा था कि मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूं, परंतु एक व्यक्ति है उनके पक्ष में जो इसे भी भंग कर सकते हैं, और इसलिए भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण का जयकार करते हुए उस दिन रणभूमि में गए, जय श्री कृष्ण बोलते हुए, कि उनके अलावा और कोई व्यक्ति नहीं जान सकता था कि मैंने क्या प्रतिज्ञा ली थी और ये पांच बाण किसके पास थे। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण, हालांकि बहुत सी उनके और भी लीलाएं हैं महाभारत में ही, कैसे उन्होंने अर्जुन, विशेष रूप से अर्जुन की रक्षा की, और खैर अपने सभी भक्तों की रक्षा भगवान श्री कृष्ण करते हैं, इसलिए उनका नाम है अच्युत। इसलिए जब भी हम किसी विकट परिस्थिति में हों तो भगवान को इस नाम से पुकारना चाहिए, अच्युत, कि भगवान को हम याद दिलाएं कि आपका नाम है अच्युत, जो आप अपने भक्तों की रक्षा से कभी च्युत नहीं होते, इसलिए हे अच्युत आप मेरी रक्षा कीजिए। और अपने भक्तों के प्रति स्नेह से कभी भगवान च्युत नहीं होते, अपना स्नेह व्यक्त करते हुए भगवान स्नेह व्यक्त कैसे करते हैं कि यदि कोई भगवान की भक्ति छोड़ भी दे, परंतु भगवान स्नेह युक्त अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते। और चैतन्य चरितामृत में इसके विषय में बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें कहा गया है, सेई भक्त धन्य ये ना छाड़े प्रभु चरण, सेई प्रभु धन्य ये ना छाड़े निज जन। ये घटना आती है जब चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त ये प्रभु श्री राम के बहुत अनन्य भक्त, और चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त की परीक्षा लेते हुए मुरारी गुप्त से कहते हैं कि देखो तुम ये राम राम का नाम जप करते हो, परंतु उनके स्रोत तो भगवान श्री कृष्ण है, तो तुम कल से कृष्ण नाम जप करो। तो मुरारी गुप्त, वो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, तो उन्होंने प्रयास किया, परंतु आकर वो चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं, नहीं होता मुझसे, मैं अपने प्रभु श्री राम का नाम जप नहीं छोड़ सकता, आप चाहे किसी का भी नाम मुझे बोलिए लेने के लिए, मैं नहीं ले सकूंगा, केवल मेरे श्री रघुनाथ, मेरे प्रभु श्री राम मेरे आराध्य देव हैं। और क्योंकि मुरारी गुप्त कौन है, हनुमान जी, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने यह श्लोक कहा, सेई भक्त धन्य, धन्य है वो भक्त जो अपने प्रभु के चरण कभी नहीं छोड़ता चाहे कुछ भी हो जाए, और धन्य है वो प्रभु जो अपने निज भक्त को कभी नहीं छोड़ते। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त इनका गुणगान करते हुए ये श्लोक कहा, और इसके पश्चात इसमें कहा गया है, दुर्दैवे सेवक यदि आय अन्य स्थाने, से ठाकुर धन्य तारे चूले धरी आने। यदि दुर्दैवश भगवान को कोई भक्त भगवान की भक्ति छोड़कर भी चला जाए अन्य स्थाने, दुर्दैवश किसी कारणवश गिर गया, वो च्युत हो गया अपनी भक्ति से और अन्य स्थान में चला गया, इंद्रिय भोग में लग गया, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं से ठाकुर धन्य, वो भगवान वो ठाकुर धन्य है, तारे चूले धरी आने, उसकी चोटी पकड़कर उसे फिर से अपने चरणों में लेके आते हैं। इसलिए शिखा रखना बहुत अच्छा है कि यदि, इसलिए मायावादियों की शिखा नहीं होती, इसलिए वो चले भी जाएं तो फिर मुश्किल है उनको पकड़ कर लाना, परंतु जो वैष्णव भक्त होते हैं वो शिखा इसलिए भी रखते हैं कि यदि कोई भगवान की भक्ति को छोड़ के अन्य स्थान भी चला जाए तो भगवान यहां पर कहे तारे चूल्हे धारी आने, उसकी चोटी पकड़कर उसे फिर से अपने चरणों में लाते हैं। जैसे कि एक हमारे हरे कृष्णा के एक भक्त, वो मंदिर में रहना उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, सहन नहीं हो रहा था मंदिर में रहना, सुबह जल्दी उठना, चार नियम पालन करना, 16 माला जप करना, प्रचार और ये सब कुछ। तो उन्होंने रात को प्लान किया कि जाएंगे अन्य स्थाने, और अन्य स्थान क्या, सब माया देवी के जो अन्य स्थान, उन सब स्थानों में जाकर फिर से अपनी पुरानी आदतों में लगने का प्रयास किया। तो वो सबसे पहले वो प्लेन में बैठे दूसरे शहर जाने के लिए। तो जब प्लेन में वो बैठे, पहले से उन्होंने सब टिकट वगैरह निकाल रखा था, तो जैसे ही प्लेन में गए, वो प्लेन में बैठे, प्लेन में बगल में हरे कृष्णा भक्त आ गए। और वो प्लेन में सामने स्क्रीन होता है जहां पर अलग अलग पिक्चरें वगैरह दिखाई जाती हैं, तो वो अपना वो देख रहे थे और ये भक्त भगवत गीता निकालकर भगवत गीता पढ़ रहे। और इन्होंने अपना सारा भक्त का वेशभूषा निकाल लिया था, तो ये जो हरे कृष्ण डिवोटी को पता नहीं कि ये अभी अभी मंदिर से आए फ्रेश। तो अब हरे कृष्ण डिवोटी जहां कहीं पर भी हो, वो अवसर देखते हैं प्रचार का। तो जब इनका टीवी वगैरह देखना बंद हो गया, तो ये हरे कृष्ण डिवोटी ने इनसे बात करना शुरू किया, आप कहां जा रहे हैं? तो ये कहे, कहीं नहीं। तो हरे कृष्ण डिवोटी शुरू, अरे कहीं नहीं कैसे, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कहीं तो जाना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि हमें मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि हमें पता होना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। आप भगवत गीता के बारे में सुने? बहुत सुना हूं भगवत गीता के बारे में। तो वो पूरा जो उनका फ्लाइट का जर्नी था, उसमें पूरा 6 डे गीता कोर्स सुना दिया इनको। ये पूरा सब सुनने के बाद एयरपोर्ट पे उतरे, भागने के लिए कहीं भी जा रहे थे तो बुक डिस्ट्रीब्यूटर आ गया बुक्स लेके, गीता और इत्यादि लेके दिखाने के लिए। तो उन्होंने इतना प्रयास किया वहां से भागकर, फिर वो एक ऐसे स्थान पर गए जहां पर इस्कॉन का कोई सेंटर नहीं, कुछ नहीं। तो वहां पर देखा कि हरे कृष्णा का फूड फॉर लाइफ खिचड़ी का वैन आ गया और वहां पे वो लोग खिचड़ी बांटने लगे। तो अब भूख लगी थी तो सोचा कि जाकर हम खिचड़ी खाएंगे केवल और कुछ नहीं। तो जाकर खिचड़ी खाने के लिए वहां पर लाइन में खड़े हुए, और जैसे वो उस खिचड़ी को खा रहे थे तो वही सोच रहे थे, अरे बाकी सब तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो प्रसाद मिलता था रोज वहां पे, वो कहां मुझे मिलेगा, कहां पर ये खिचड़ी गरम गरम। तो जैसे वो खिचड़ी का प्लेट खत्म हुआ, इनका सारा जो भी वो भूत सवार हुआ था भागने, वो सब भी खत्म हुआ और उसी वैन में बैठकर फिर से वो मंदिर आ गए। और सेठ ठाकुर धन्य तारे चूल्हे धरी आने, कि वो उसकी चोटी पकड़ के या जो भी पकड़कर उसे फिर से ले आते हैं। अब दो अन्य महत्वपूर्ण शब्द यहां पर हैं, एक है निरीक्षे हम। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मानो भगवान ने यह पूछा कि तुम क्यों जाना चाहते हो। तो अर्जुन कहते हैं मैं देखना चाहता हूं, निरीक्षे निरीक्षण करना चाहता हूं। अब देखिए इसके पीछे अर्जुन ने कह दिया, जैसे कि अक्सर आजकल भी आप यदि किसी को कहो कि अरे थोड़ा वेडनेसडे प्रोग्राम है आज चलोगे क्या, और वो यदि ये कहे देखता हूं, इसका अर्थ क्या है? नहीं आने वाला, है ना। जब जब कोई ये कहता है ना देखता हूं, मतलब वो नहीं आने वाला, वो दिखने नहीं वाला। तो यहां पर अर्जुन जब भगवान को कह रहे हैं कि मैं देखता हूं, मतलब युद्ध नहीं करने वाला ये, देखना क्या है, अरे यहां पर लोग आए हैं उनको देखना, कभी देखा नहीं इनको, दुर्योधन दुशासन भीष्म द्रोण, इनको कभी देखा नहीं, कि अभी देखता हूं। तो देखता हूं निरीक्षे हम, इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो कई बार गुस्से में बोलते हैं देख लूंगा तुझे, परंतु यहां पर उस भावना से अर्जुन नहीं बोलते, देखता हूं देखता हूं। तो यहां पर भगवान समझ गए कि धीरे धीरे गीता बोलने का टाइम आ रहा है। अब योद्धु कामान का अर्थ हमने बताया कि जैसे सभी अर्जुन देखना चाहता था कि युद्ध की कामना से कौन कौन आए, तो भगवान मानो ये पूछे कि तुम किस कामना से आए हो, फिर तुम युद्ध की कामना से नहीं आए क्या, कि तुम देख रहे हो कि ये लोग युद्ध की कामना से आए।
अरे यहां पर जो भी आए हैं वो सब युद्ध की कामना से आए हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में कौन जाता है, पैसे कमाने के लिए तो लजा जाते हैं वहां पर, तो वैसे ही यहां पर ये लोग सब आए हुए हैं, सभी युद्धो कामान, योद्धु कामान है। परंतु यहां पर एक गहरा मतलब यह है कि हालांकि अर्जुन वो युद्ध की कामना अब नहीं करने वाला, और पूरी गीता भगवान अर्जुन को सुनाए ताकि अर्जुन युद्ध की कामना करे, नहीं, भगवान ने गीता इसलिए नहीं सुनाई। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि भगवान ने अर्जुन को गीता इसलिए सुनाई ताकि अर्जुन युद्ध की कामना फिर से करे, नहीं, भगवान ने गीता इसलिए सुनाई कि अर्जुन युद्ध की कामना न करे बल्कि मेरी कामना पूरी करे। और उनकी कामना क्या थी, धर्म संस्थापना था। तो एक दृष्टिकोण से अर्जुन जो यहां पर अन्य योद्धा एकत्रित हुए हैं उनको देखने के लिए कि क्या वो युद्ध की कामना से आए हैं, और ये देखने के लिए कि वो युद्ध की कामना से आए तो मैं भी फिर युद्ध की कामना रखता हूं। परंतु भगवान जो कि बाहरी दृष्टिकोण से लगे कि गीता सुनाई अर्जुन के युद्ध की कामना को उजागर करने के लिए, परंतु वो सत्य बात नहीं थी। इसलिए इस गहरे मतलब को हमें इस योद्धु कामान शब्द से समझना होगा कि भगवान अर्जुन को युद्ध की कामना में नहीं लगाना चाहते बल्कि उनकी कामना में और धर्म की संस्थापना करने में लगाने वाले हैं। और अब अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य में, विशेष रूप से भीष्म, द्रोण, कृपा, इनके सामने भगवान श्री अच्युत ने खड़ा कर दिया। अब अर्जुन का क्या हाल होगा उसे देखने के लिए आप लोग आइए अगले बुधवार। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका? ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। जय श्री राधा गोपीनाथ भगवान की। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदेव।